भजन संहिता नवासी, भजन नवासी पद एक से लेकर चार तक। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। भजन नवासी पद तीन से भजनकार घोषणा आरंभ करता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूंगा। यहां परमेश्वर उत्तर देता है जो पद तीन से पद सैंतीस तक है। परमेश्वर कहता है ये भविष्यवाणी है, क्योंकि भजनकार परमेश्वर की ओर से कहता है, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। उसने दाऊद से क्या शपथ खाई है? तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। भजन नवासी पद पांच, हे यहोवा, स्वर्ग से तेरे अद्भुत काम की। अब भजनकार की भूमिका आती है और परमेश्वर कुछ देर के लिए रुक जाता है, इसलिए सेला शब्द आया है, परंतु परमेश्वर फिर से कहना आरंभ करेगा। अब भजनकार कहता है, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होगी। भजन नवासी पद पांच से लेकर सात तक, और पवित्रों की सभा से तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है, उसे संतों की सभा में श्रद्धा अर्पित की जाती है। भजन नवासी पद सात में आगे लिखा है, और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर को आदर देने के बारे में हम यहूदियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं समझता हूं कि कलीसिया में हम परमेश्वर को उचित आदर प्रदर्शित नहीं करते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के लिए चंचल शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे ऊपर वाला। मैं समझता हूं हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की चेतना और महानता के प्रति जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर कितना महान है। हमें सदा उसके सम्मुख भय और श्रद्धा से पूर्ण होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने पद के कारण आदर का हक रखते हैं। मान लो आप हवाई अड्डे पर उपस्थित हैं और राष्ट्रपति वहां आता है, तो आप दौड़कर उसके पास जाकर नहीं कह सकते हैं, कैसे हो मेरे दोस्त, क्योंकि उसका पद राष्ट्रपति का है। आप उसे आदर देंगे, आप उसके पद का आदर करेंगे। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां अधिकारियों के सम्मान को गिराने का प्रयास किया जाता है, और हमारे समाज में ये साधारण बात है कि अधिकारियों का आदर न दें। ये तो पूरे समाज के पतन का कारण है। अधिकारियों का आदर ना करना, जो अधिकार रखते हैं उनका आदर ना करना, ये समाज के पतन को दर्शाता है। अत्यधिक ये दुखदाई है। कभी कभी लोग परमेश्वर के प्रति भी इस प्रकार के अनादर का व्यवहार दर्शाते हैं। हमें सदा परमेश्वर को सर्वपरि आदर और श्रद्धा के स्थान में रखना चाहिए। यहूदी परमेश्वर का इतना आदर करते थे कि जब लिखने वाला वचन की प्रतिलिपि बनाता था और वो परमेश्वर के नाम पर आता, तब वो अपने पेन को लेकर धोता था और नई स्याही में उसे डुबोकर परमेश्वर का नाम लिखता था। यदि उसे अदोनाई अर्थात प्रभु लिखना होता था, तब वो नया पेन लेकर उस शब्द को लिखता था। यदि उसे यहोवा लिखना होता था, तब वो जाकर नहाता, नए कपड़े पहनता और बिल्कुल नया पेन लेकर स्याही में डालता और उसे केवल व्यंजन या हा व हा को लिखता था। यहूदी लोग बीच में स्वर नहीं लगाते थे, क्योंकि वे समझते थे कि परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है कि उसको अपने मन से भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, और वे उसका नाम होठों पर कभी भी लाना नहीं चाहते थे। वे उसका नाम लेने की हिम्मत कभी नहीं करते थे। मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर के अभिप्राय से कहीं आगे चले जाना है। तो भी परमेश्वर के आदर का ये एक आदर्श है, परंतु हम दूसरे किनारे जाने की चाह रखते हैं। हमें वास्तव में मध्य में रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को उचित आदर और श्रद्धा दे। हम सहजता से ही परमेश्वर के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग न करें। हम उसको सबसे ऊंचे स्थान का आदर दें। संतों की सभा में और उन सबके सम्मुख जो उसके चारों ओर है, परमेश्वर का नाम महान श्रद्धा से लिया जाए। भजन 89 पद 8 से लेकर 18 तक। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसकी तरंग उठती है, तब तू उनको शांत कर देता है। तूने राहाब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इसराइल के पवित्र की ओर से है। परमेश्वर उत्तर देता है। भजनकार परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है और व्याख्या करता है कि क्यों उसका आदर करना चाहिए। उसको आदर देने का ये कारण है कि उसने आकाश मंडल और पृथ्वी की सृष्टि की है। भजन 89 पद 19 से लेकर 22 तक। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा। वह अपने शत्रुओं को भेंट ना देगा। वो हारेगा नहीं और उसे अपने शत्रु को भेंट ना देनी पड़ेगी। भजन नवासी पद 22 से लेकर 24 तक। और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा, मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। सींग ताकत का चिन्ह है और प्रभु का नाम ही उसकी ताकत होगी। भजन नवासी पद 25 से लेकर 27 तक। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दैने हाथ के नीचे कर दूंगा। वो मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे बचाने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। निस्संदेह ये दो तरह से पूरा होना है, केवल दाऊद के लिए नहीं परंतु उस वंश के लिए भी जो उसके द्वारा आएगा, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह राज करेगा। ये यीशु मसीह के लिए भी एक भविष्यवाणी है। भजन नवासी पद 28 से लेकर 36 तक। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। ये वास्तव में मसीह के लिए भविष्यवाणी है। यशया 9:7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। परमेश्वर ने शपथ खाई है कि यीशु दाऊद के सिंहासन पर सदा सदा के लिए बैठेगा। भजन नवासी पद 37। वो चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। सेला का अर्थ है परमेश्वर, जो उत्तर भजनकार को दे रहा था वो समाप्त हुआ और अब भजनकार कहता है। भजन नवासी पद 38 से लेकर 51 तक। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तू अपने दास के साथ की वाचा से घिनाया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों से उसकी नाम दराई होती है। तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तेरी जल जलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहां रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नाम धराई की सुधि कर। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूं। तेरे उन शत्रुओं ने तो, हे यहोवा, तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। और अब भजन संहिता के तीसरे भाग का अंत होता है। भजन 89 पद 52। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भजन संहिता का प्रत्येक भाग आशीष वचन से समाप्त होता है। वैसे ही यहां भी आशीष वचन कहा गया है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। भजन 90 से संहिता के चौथा भाग आरंभ होता है।